दोस्तों, मैं सिमरन केसरी प्रस्तुत हूँ आज एक नई कहानी लेकर, कहानी दिल से दिल तक में। दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम कौन नहीं जानता। हिंदी लेखन में सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम बहुत ही ऊंचा और प्रेरणादायी है। बचपन में हमने उनकी कई कहानियां और कविताएं पढ़ी हैं और उनकी ज्यादातर कहानियों का शीर्षक नारी पात्रों के नामों पर आधारित है, जिससे नारी जीवन की विशिष्टता का रेखांकन अपने आप हो जाता है। तो आज मैं उन्हीं की एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है वैश्या की लड़की। छाया प्रमोद की सहपाठिनी थी। प्रमोद नगर के एक प्रतिष्ठित और कुलीन ब्राह्मण परिवार का लड़का था और छाया नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की इकलौती कन्या। नगर में एक बहुत बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर था, जहां न जाने कितने सदा भक्त रोज बढ़ जाता था। सैकड़ों साधु संत मंदिर में पड़े पड़े भगवत भजन करते, मनमाना भोजन करते और करते मनमाना अनाचार। छाया की माँ इसी मंदिर की प्रधान नर्तकी थी। मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह वो गाने बजाने कभी न जाती। मंदिर के प्रधान पुजारी की उस पर विशेष कृपा थी, इसीलिए उसे किसी बात की कमी नहीं थी। गंगा के किनारे उनकी विशाल कोठी थी, जहां से सदा संगीत की मधुर ध्वनि आया करती। नगर के संगीत प्रेमी जब स्वयं ही उसके यहाँ पहुंच जाते तो राजरानी उन्हें निराश न करती, किंतु वो किसी के यहाँ बुलाने पर गाने के लिए नहीं जाती थी। छाया इसी राजरानी की इकलौती कन्या थी। राजरानी की सारी आशाएं इसी कन्या के ऊपर अवलंबित थी। विद्या अध्ययन की ओर छाया की अधिक रुचि देखकर राजरानी ने उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। छाया नगर की कुछ पुरानी प्रथा के अनुयायियों के विरोध करने पर भी कुलीन घर की लड़कियों के साथ पढ़ते पढ़ते कॉलेज तक पहुंच गई। और जिस दिन पहले पहल वो कॉलेज पहुंची, प्रमोद से उसकी पहचान हो गई। यह पहचान सिर्फ पहचान ही ना बनकर रह सकी, धीरे धीरे वो मित्रता में परिवर्तित हुई और अंत में उसने प्रणय का रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि परिवार वालों का विरोध, तिरस्कार और प्रताड़ना ना तो प्रमोद को ही उसके पद से विचलित कर सका और ना ही छाया को। विवाह के लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में रजिस्ट्री होने के बाद आर्य समाज मंदिर में उनका विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी देकर वो दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। बचपन से ही कुलीन घर की लड़कियों के साथ मिलते जुलते रहने के कारण उनके रीति रिवाजों को देखते देखते छाया के हृदय में एक कुलवधु का जीवन बिताने की प्रबल उत्कंठा जागृत हो उठी थी। प्रमोद के साथ विवाह सूत्र में बंधकर छाया ने उसी सुख का अनुभव किया। वो एक कुलवधु की ही तरह प्रमोद के इशारों पर नाचना चाहती थी। प्रमोद के नहा चुकने पर अपने हाथ से ही वो प्रमोद के कपड़े धोती। अभ्यस्त ना होने पर भी दोनों समय प्रमोद के लिए वो अपने ही हाथ से भोजन बनाती और थाली परोसने के बाद जब तक प्रमोद भोजन करते वो उन्हें पंखा झला करती। प्रमोद के भोजन कर चुकने के बाद उनकी जूठी थाली में भोजन करने में वो एक अकथनीय सुख का अनुभव करती। इसके पहले इस प्रकार काम करने का उसके जीवन में कभी अवसर ना आया था, किंतु धीरे धीरे उसने अपने आप को ऐसा अभ्यस्त कर लिया कि कोई काम करने में कठिनाई न पड़ती। राजरानी को पुत्री की परिस्थिति का पता लगता ही रहता था। वो सोचती थी कि मेरे साथ रहकर छाया यहाँ रानियों की तरह हुकूमत कर सकती थी। बड़े बड़े विद्वान रईस तक यहाँ आकर उसकी कदम बोसी कर जाया करते, किंतु उसकी तो मति ही पलट गई है। अपने आप ही उसने दासियों का सा जीवन स्वीकार कर लिया है। छाया को किसी प्रकार फिर से अपने चंगुल में फांस लेने के प्रयत्न में वो अब भी लगी रहती। वो सोचती, ऐश आराम में पली हुई लड़की कितने दिनों तक कष्ट का जीवन बिता सकेगी। कभी न कभी चेतेगी और आएगी, किंतु छाया तो माता के घर के ऐश आराम को घृणा की दृष्टि से देखती थी। यहाँ वो इस कष्ट में भी जिस सुख का अनुभव करती, उसकी आत्मा को जितनी शांति मिलती थी, उस रूप के हाट में, उस वैभव की चकाचौंध में, उसके शतांश का भी स्वप्न देखना छाया के लिए दुराशा मात्र थी। छाया प्रमोद के विशुद्ध और पवित्र प्रेम के ऊपर संसार की सारी विभूतियों को निछावर कर सकती थी। प्रमोद के साथ ये छोटा सा मकान उसे नंदनवन से भी अधिक सुहावना जान पड़ता था। सारांश यह था कि छाया को कोई इच्छा न थी। प्रमोद का प्यार और उनके चरणों की सेवा का अधिकार वो सब कुछ पा चुकी थी। प्रमोद के विवाह के बाद प्रमोद के माता पिता ने उन्हें अपने परिवार में सम्मिलित नहीं किया। अपने एकलौते बेटे को त्याग देने में उन्हें बहुत कष्ट था, किंतु प्रमोद के इस कृत्य ने समाज में उनका सिर नीचा कर दिया था। अतः वो प्रमोद को क्षमा न कर सके। स्वाभिमानी प्रमोद ने भी माता पिता से क्षमा की याचना न की। अपनी समझ में उन्होंने कोई बुरा काम न किया था, इसीलिए शहर में ही पिता के कई मकानों के रहने पर भी वे किराए के मकान में रहने लगे। परिवार और समाज ने प्रमोद को त्याग दिया था, किंतु उनके कुछ अपने ऐसे मित्र थे जो उन्हें इस समय भी अपनाए हुए थे। अपने इस छोटे से गिने चुने मित्रों के संसार में छाया के साथ रहकर प्रमोद को अब और किसी भी आवश्यकता ना थी। आर्थिक कठिनाइयां कभी बाधा बनकर उनके इस सुख के सामने खड़ी हो जाएंगी, प्रमोद को इसका ध्यान भी ना था। कॉलेज के प्रोफेसरों और प्रिंसिपल की उनके साथ बड़ी सहानुभूति थी। उनका आचरण कॉलेज में बड़ा उज्जवल रहा था और वे परीक्षाओं में सदा पहले ही आए थे, इसीलिए वो थोड़ा प्रयत्न करने पर वहां प्रोफेसर हो सकते थे। परंतु सुख की आत्मविस्मृति तक वाह्य आवश्यकताओं की पहुंच कहां। कॉलेज में एक हिंदी के प्रोफेसर का स्थान खाली भी हुआ, किंतु प्रमोद अपने सुख में इतना भूल गए थे कि उन्हें और किसी बात का स्मरण ही नहीं रहा। उनके मित्रों और छाया ने एक दो बार उनसे इस पद के लिए प्रयत्न करने के लिए कहा भी, किंतु उनका ये उत्तर सुनकर, छाया क्यों मुझे अपने पास से दूर भगा देना चाहती हो, छाया चुप हो गई। उसे अधिक कहने का साहस ना हुआ। वो प्रमोद के भावुक स्वभाव से भली भांति परिचित थी। छोटी छोटी साधारण बातों का भी उनके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। यौवन जनित उन्माद और लालसाएं चिरस्थाई नहीं होती। इस उन्माद के नशे में जिसे हम प्रेम का नाम दे डालते हैं, वो वास्तव में प्रेम नहीं किंतु वासनाओं की प्यास मात्र है। लगातार 6 महीने तक छाया के साथ रहकर अब प्रमोद की आंखों में भी छाया के प्रेम और सौंदर्य का वो महत्व नहीं रह गया था जो पहले था। अब वो नशा कहाँ था? उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। उन्हें अब ऐसा जान पड़ता जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल कर डाली है। आर्थिक कठिनाइयां भी उन्हें पद पद पर शूल की तरह कष्ट पहुंचा रही थी। इसके अतिरिक्त माता पिता के स्नेह का अभाव उन्हें बहुत खटक रहा था। उनका चित व्याकुल सा रहता। बार बार उस स्नेह की शीतल छाया में दौड़कर शांति पाने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठता। माता पिता के स्नेह में जो शीतलता, ममता का मधुर दुलार और जो एक प्रकार की अनुपम शांति मिलती है, वो उन्हें छाया के पास ना मिलती। छाया के प्रेम में उन्हें सुख मिलता था, शांति नहीं। स्नेह मिलता था, पर शीतलता नहीं, आनंद मिलता पर तृप्ति नहीं। हाँ, प्यास और तीव्र होती जान पड़ती, आनंद और सुख के जलन की मात्रा अधिक मालूम होती। वे माता पिता के स्नेह के लिए अत्यधिक विकल रहते, किंतु जब माता पिता ने ही उन्हें अपने प्रेम के पल्ले से उतार कर अलग कर दिया, तब स्वयं उनके पास जाकर उनके प्रेम और दया की भिक्षा मांगना प्रमोद के स्वाभिमानी स्वभाव के विरुद्ध था। प्रमोद का स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा न रह गया था। दुश्चिंताओं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण वो बहुत कृश और विचित्र से रहते। समाज में भी अब वो मान प्रतिष्ठा ना थी। हर स्थान पर उनके इसी विवाह की चर्चा सुनाई पड़ती। प्रमोद के इस कार्य से ही नहीं, स्वयं प्रमोद से भी किसी को किसी प्रकार की कोई सहानुभूति न रह गई थी। सब लोग प्रायः यही कहते कि प्रमोद 2-3 साल बाद अपने इस कृत्य पर पछताएगा। ये विवाह प्रमोद सरीखे विवेकी और विद्वान युवक के अनुकूल नहीं हुआ। ठहरी तो आखिर वैश्या की ही लड़की ना, कितने दिन तक साथ देगी? वैश्याएं भी किसी की होकर रहेंगी? इस प्रकार न जाने कितने तरह के आक्षेप प्रमोद के सुनने में आते। इन सब बातों को सुन सुनकर प्रमोद की आत्मा विचलित सी हो उठी। उन्हें इस सब बातों का मूल कारण छाया ही जान पड़ती। वे सोचते, कहां से मेरी छाया से पहचान हुई? ना इससे मेरी पहचान होती और ना ही विपत्तियों का समूह इस प्रकार मुझ पर टूट पड़ता। वे अब छाया से कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे। उनके प्रेम में अपने आप शिथिलता आने लगी। छाया का मूल्य उनकी आंखों में घटने लगा, पर प्रमोद स्वयं ये सब चाहते न थे। छाया में वैश्या की लड़की होने के अतिरिक्त और कोई अवगुण मिलता ना था। वे विवश थे, हृदय के ऊपर किसका वश चला है? वे अपने व्यवहार पर स्वयं ही कभी कभी दुखित हो जाते, फिर वही भूल करते। कभी कभी औरों के सामने भी छाया से वो ऐसा व्यवहार कर बैठते जो अनुचित कहा जा सकता था। छाया सुख की छाया में ही पलकर इतनी बड़ी हुई थी। अपमान, अनादर और तिरस्कार के ज्वालामय संसार से वो परिचित न थी। अब पद पद पर उसे प्रमोद से प्रेम के कुछ मीठे शब्दों के स्थान पर तिरस्कार से भरा हुआ अपमान ही मिलता था। प्रमोद के इस परिवर्तन के बाद भी छाया ने समझ लिया था कि प्रमोद के हृदय में उसने एक ऐसा स्थान बना लिया है जिस तक किसी और की पहुंच नहीं है। उसे इसी में संतोष था। एक कुलवधू इसके अतिरिक्त और चाहती ही क्या है? पत्नी के रूप में पहुंचकर छाया ने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था। प्रमोद के चरणों में उसके लिए थोड़ा सा स्थान बना रहे, यही उसकी साधना थी। और इस साधना के बल पर ही वो प्रमोद का किया हुआ अपमान और तिरस्कार हंसकर सह सकती थी। उसके ऊपर उस अपमान और तिरस्कार का अधिक प्रभाव ना पड़ता। प्रमोद के हंसकर बोलने पर वो सब कुछ भूल जाती थी। उसे कुछ याद रहता तो केवल प्रमोद का मधुर व्यवहार।